نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الله تبارك تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فبسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنوت وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بؤثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. سورة عاديات صرف 11 آیتوں کی سورة ہے اور ہر آیت آدھی لائن پہ ہے، یعنی اگر آپ اس کو ایک پیپر پر لکھنا چاہیں تو صرف 4 لائنوں میں یہ صورت پوری ہوتی ہے. لیکن آئیے ذرا آج اس کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ ہم سب کی دوڑ کس طرف ہے، ہم زندگی کی اس دوڑ میں کہاں جا رہے ہیں اور ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے. تھوڑا سا اپنے موضوع کے ساتھ اس بات کو کر دوں کہ آج کل ہم رمضان کی تیاری کے سلسلے میں مختلف مواقع پہ ملتے ہیں اور ہماری خواہش کیا ہے کہ اس رمضان کے آنے سے پہلے ہم لوگ اس کی پوری تیاری کر سکے، اور وہ تیاری کیسی ہو کہ جب ہم رمضان میں داخل ہوں تو ہم اس کا بہترین طریقے سے فائدہ اٹھا سکیں. کوئی بھی کام تیاری کے ساتھ کریں یا بغیر تیاری کے کریں اس میں بہت فرق ہوتا ہے. ہم سب خواتین تو اس کو بہت ہی اچھی طرح سے جانتی ہیں کہ کسی ایک پروگرام کے لیے ہم کئی دن تک تیاری کرتے ہیں، پھر بھی آخری وقت تک ہمیں کچھ نہ کچھ کمی لگتی ہے. تو آنے والے رمضان کو اگر ہم بہترین طریقے سے گزارنا چاہتے ہیں تو ہم یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا کیوں. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس سیریز میں آج ہم جس موضوع کو ٹچ کریں گے وہ کیا ہے کہ وٹ از دا پرپز آف لائف، ہماری زندگیوں کا مقصد کیا ہے، میرے رب نے مجھے کیوں پیدا کیا، اور اس دنیا میں آ کر جو کچھ میں کر رہی ہوں آخر اس کا کوئی نتیجہ بھی نکلنے والا ہے کہ نہیں. یہ چھوٹی سی صورت اس لیے چوز کی کہ بہت سارے ساتھیوں کو الحمدللہ یہ زبانی یاد ہوتی ہے. اگر اس وقت آپ کے سامنے مصحف نہ بھی ہوں تو آپ میرے ساتھ ساتھ اپنے تصور کی آنکھ سے ان آیتوں کو دیکھیں گے. تو آئیے تھوڑا سا آیت کا ترجمہ کرتے ہیں ایک ایک آیت کا، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ آپ کو بھی موقع دیں گے. آپ نے صرف سننا نہیں ہے، آپ نے سنانا بھی ہے، اور ہم سب مل کے ایک دوسرے سے سیکھیں گے. ہم میں سے کسی کو زیادہ یا کم نہیں آتا، پتہ سب کو ہوتا ہے، صرف یہ کہ کسی کو بتانے کا موقع مل جاتا ہے کسی کو نہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحاً. ول آ وہ قسم کا ہے، اور کیا فرمایا، ان سرپٹ دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم. کون سے، فلموریات قدحاً، جو ہانپ اٹھتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں، پھر پتھروں پر نال مار کر آگ نکالتے ہیں. پھل مغیرات صبحن، پھر صبح کو چھاپا مارتے ہیں. فاسر نبی نقعن، پھر اس میں وہ گرد اٹھاتے ہیں. فوسط نبی جمع، پھر اس کے بعد وہ دشمن کی فوجوں میں داخل ہو جاتے ہیں. اگر ہم دیکھیں تو 5 آیتوں میں 5 چیزوں کو بنیاد بنا کر قسم کھائی گئی. قسم کھانے کو ہم اپنے کلچر میں سمجھتے ہیں کہ جب کسی کو کسی کی بات کا یقین دلانا ہو تو ہم قسم کھاتے ہیں. یاد رکھیے کہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو قسمیں کھائی ہیں وہ ہمیں یقین دلانے کے لیے نہیں کھلائیں، کیونکہ اللہ کی بات پہ تو ہمیں آنکھیں بند کر کے یقین کرنا ہے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے. تو پھر آپ پوچھیں گے کہ قرآن پاک جو اتنی خوبصورت کتاب ہے اس میں 30ویں پارے میں خاص طور پہ اتنی چیزوں کی قسمیں کیوں کھائی ہے؟ تو بس ایک چھوٹی سی بات سمجھ کے ہم آگے چلتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جن جن چیزوں کی قسم کھائی ہے، ایک تو ان کو گواہ بنایا اور دوسرا ان کی اہمیت کا احساس دلایا. جیسا کہ یہاں آپ نے دیکھا کہ ان 5 آیات میں گھوڑوں کی کچھ کیفیات کی قسم کھائی ہے کہ یہ وہ گھوڑے ہیں جو سرپٹ دوڑتے ہیں. امیجینیشن میں لائیے، گھوڑا کس چیز کا سمبل ہے؟ اللہ کے راستے میں نکلنے کا. اور جانوروں میں گھوڑے کو بہت حیثیت حاصل ہے. جب ہم ان آیتوں کی تفسیر کرتے ہیں تو ہم بہت ساری حدیثیں بھی ساتھ کوٹ کرتے ہیں جس کی اس وقت ضرورت نہیں ہے، لیکن یہاں بظاہر گھوڑوں سے اللہ تعالیٰ نے ایک کام لیا ہے. اور یہ وہ گھوڑے ہیں جو دشمنوں کی صفوں میں داخل ہوتے ہیں، اس سے پہلے ہانپتے ہیں، کانپتے ہیں، پھر وہ چھاپا مارتے ہیں، پھر وہ زمین پہ قدم رکھتے ہیں تو جو چنگاریاں نکلتی ہیں اللہ نے ان کی قسم کھائی. और इन सब चीजों को सामने रखते वक्त बस मैं और आप एक बात सोचें कि जिस घोड़े की इतनी कसमें और जिस घोड़े को अल्लाह ने इतनी शान दी, तो उस घोड़े पे बैठे हुए की क्या शान होगी जिसको मुजाहिद फी सबीलिल्लाह कहते हैं, जो अल्लाह के दीन के दिफा के लिए आता है। असल में यहाँ अल्लाह सुबहाना ताला ने हम सबको सिखाया है कि तुम्हारी जिंदगी किधर जानी चाहिए, तुम्हारी जिंदगियों का रुख अल्लाह के दीन की सरबुलंदी हो। अगर आप देखें तो हम कब से ऐसे ही जी रहे हैं, सुबह होती है शाम होती है जिंदगी यूं ही तमाम होती है। पहले हम बच्चे थे, फिर थोड़े से बड़े हुए, फिर जवानी आई, फिर जवानी जाने भी लगती है और फिर बुढ़ापा आता है, तो फिर वो तो कहते हैं कि आके कभी नहीं जाता। ये जिंदगी के सारे मरहले आखिर क्यों गुजरते हैं हम पे? घोड़ों की चाप का अल्लाह ने इतना यकीन दिलाया कि इनके एक एक कदम पर अजर है। और ऐसे घोड़ों का जिक्र कुरान पाक, जो दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब, उसमें कर दिया। तो एक इंसान, क्या उसकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है? मैं और आप अपने आप से पूछें, मैं किधर जा रही हूँ, मेरी जिंदगी का रुख क्या है? अल्लाह तआला भी पूछते हैं, फाइना तस्खबून, वेयर आर यू गोइंग, तुम्हारा क्या रुख है, तुम क्यों जीते हो? सूरत मोमिनून में अल्लाह तआला पूछते हैं, अफा हसिब तुमन्नमा खलकनाकुम अबसा, क्या बस तुमने ये गुमान किया कि हमने तुमको बेमकसद पैदा किया? यू डोंट हैव एनी पर्पज ऑफ लाइफ, बस खाते हैं पीते हैं जीते हैं, ईट ड्रिंक बी मैरी, दैट्स इट, ईट रिपीट और सो जा और स्लीप, सब कुछ यही है। आज आप देखिए कि जिंदगी का जो नक्शा दुनिया में दिखता है वो क्या कहते हैं, मौज करो मस्ती करो, बाबर बैश कोश के जहां दोबारा नीस्त। हर एक ने मुख्तलिफ नामों से कुछ स्लोगन्स बना रखे हैं। लोग कहते हैं जीते हैं बस जीने के लिए, खाते हैं बस खाने के लिए, और बस दुनिया में आए हैं खाएंगे पिएंगे कुछ अच्छे काम करेंगे फिर चले जाएंगे। अल्लाह ताला कहते हैं नहीं, कुछ हकीकतें हैं। अभी तक तो हमने सिर्फ घोड़ों की कस्में देखी है ना, अब कसम के बाद जरूर कोई बात होती है ना। जैसे आप कहते हैं मैं कसम खाती हूँ, तो उस कसम के बाद आप क्या कहते हैं किसी को, कोई बात ही कहते हैं ना। आइए देखते हैं कि अल्लाह ताला ने घोड़ों की कसम खाकर कहा क्या है। और ये बात सुनने के लिए हकीकत में हमें बहुत हौसला चाहिए, क्योंकि बात हो रही है इंसान की और हम सब इंसान है। पहली बात, इन अल इंसान अली रब्बिही लकनूद, मुझे तो शर्म आ रही है इसका तर्जमा करते हुए। बेशक इंसान अपने परवरदिगार का बड़ा ही एहसान फरामोश है, नाशनास, नहीं पहचानता। कनूद का लफ्ज है कनादा से, यानी इंसान अपने ही रब का सबसे बड़ा एहसान फरामोश है। चलिए, अल्लाह ने कहा है, मैं तो नहीं कह रही, तर्जमा आपके सामने, आप खोल के देख सकते हैं, स्क्रीन पे लगाएंगे तो आप सब भी देख सकेंगे। इंसान कैसे अपने रब का एहसान ना शुक्रा, या आप कह सकती हैं कि वो ना शुक्रा है? आप कैसे कह सकते हैं कि अल्लाह ने ये बात कह दी? और ये यहां नहीं कही, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बहुत जगह कहा, कलीलुम मिन इबादी शुक्र, मेरे बंदों में बहुत थोड़े शुक्र वाले हैं, बहुत थोड़े हैं कि जिनको जिस मकसद के लिए पैदा किए वो वही काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने इंसान की नाशुक्रियों का तذکرہ कुरान पाक में बहुत जगह किया। चलिए आइए देखते हैं कि फिर शुक्र क्या होता है। जाहिर है कि अल्लाह ने हम पर एक बात की है कि इंसान बड़ा नाशुक्र है, तो फिर हमें समझना है ना कि मैं नाशुक्री किस तरह हूं और शुक्र किसको कहते हैं। तो नाशुक्री को समझना है तो शुक्र समझना पड़ेगा। उर्दू में हम बहुत बोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र 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 है, चाहे हम किसी भी पोज में कहें, बड़े शिकवों वाला शुक्र कहें शुक्र है, लेकिन कहते तो है ना। लेकिन आप में से कोई भी, मोस्ट वेलकम, ये बताइए कि शुक्र कहते किसको है, कहेंगे हैं?
अल्लाह ताला का बेइंतहा एहसान
जी, वो तो
शुक्र नाम दिया गया।
ठीक है, ओके। और भी कोई कुछ कहना चाहे, ऐसे जो जो आता है वो बता दीजिए, मैं बताऊं। देखिए, डिक्शनरी में शुक्र कहते हैं गाय को चारा थोड़ा भी मिले लेकिन उसके बावजूद वो दूध ज्यादा दे। अब इमेजिन करें कि एक शख्स है, उसके पास गाय है, वो उसको बहुत कुछ नहीं भी दे सकता, लेकिन जब दूध धोने जाए तो वो बहुत सारा दूध दे दे। इस कैफियत को अरबी में शुक्र कहते हैं। अब इसको अपने ऊपर ले लीजिए, अल्लाह ने हमें नेमतें दी, अल्लाह थोड़ी भी नेमतें दें, बंदा रब की इबादत, उसकी अतात, उसकी फरमाबरदारी ज्यादा करे, इसको शुक्र कहेंगे। शुक्र क्या है कि अल्लाह की दी हुई नेमतों को अल्लाह ही के हुक्म से इस्तेमाल किया जाए। और याद रखिए कि जिस्म के हर हिस्से का शुक्र अलग है। आंखों का शुक्र क्या है कि इनको उन जगहों पर रखा जाए, वो चीजें इसको दिखाई जाए जिनका अल्लाह ने हुक्म दिया। साथ ही नाशुक्री भी देख ले, क्योंकि अल्लाह ने तो कहा लकनूद, तुम नाशुक्रे हो, तो आंखों की नाशुक्री के, आंखें देने वाले के हुक्म के खिलाफ चीजें देखी जाए, इन आंखों से उन रास्तों पे चला जाए जिधर जाने से अल्लाह ने मना किया, ये आंखों की नाशुक्री है। कानों का शुक्र क्या है? कि इन कानों को वो सुनाया जाए जिसके सुनाने का मालिक ने हुक्म दिया, तो कानों की फिर नाशुक्री क्या होगी? कि इन कानों से वो सुना जाए जिसके देखने का देने वाले ने मना किया। जुबान का शुक्र क्या है? जिस चीज के लिए रब ने कहा बोलो वो बोलो। वमन अहसनु कौलन मिम्मन दअ इला अल्लाह, अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं उससे अच्छी बात किसकी है जो अल्लाह की तरफ बुलाए। यानी सबसे खूबसूरत इस्तेमाल जुबान का आपको पता है कुरान में क्या? दअ इला अल्लाह, लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ दावत देना, लोगों को रब से जोड़ना, लोगों को रब्बानी बनाना, खुद से नहीं, किसी जमात गिरोह इदारे से नहीं, अल्लाह से जोड़ना रब को। अल्लाह कहते वमन अहसनु, सूरह हामीम सजदा की आयत है, कोई उससे प्यारा जो लोगों को अल्लाह से जोड़े, और जोड़ते बस नहीं खुद भी अमल करे, और साथ साथ अपना नाम मुसलमान कहे, किसी गिरोह फिरके के साथ ना जोड़े, अपना नाम इस्लाम के साथ जोड़े। तो लिहाजा जुबान का शुक्र क्या है? लोगों को अच्छी बातों का हुक्म दिया जाए, अच्छे तरीके से उनको बुराई और भलाई का फर्क बताया जाए, फिर अल्लाह की नेमतों की तारीफ की जाए, अल्लाह जो दे उसका भी शुक्र, जो ना दे उसका ज्यादा शुक्र। क्योंकि जाहिर हम ये सोचते हैं कि हमारे पास ये चीज नहीं है, लेकिन हकीकत ये है कि इंसान को किसी चीज से दूर रख के अल्लाह ताला उसको बहुत बड़ी बला और आजमाइश से बचा लेते हैं। मसलन आप देखिए कि एक शख्स है, वो कहता है कि मुझे गाड़ी मिल जाए। अब उसका क्या ख्याल है? गाड़ी आएगी तो मेरे लिए सफर आसान होगा, बड़ी सी गाड़ी मिल जाए, लैंड क्रूजर मिल जाए, मिसाल है कोई भी ले लीजिए। अब वो बड़ी सी गाड़ी मिले लेकिन कोई उसकी जान का दुश्मन हो जाए, कोई चोर डाकू पीछे लग जाए, या गाड़ी मिले लेकिन उसके बाद उसका हादसा हो जाए जिसमें वो अपनी टांगों से महरूम हो जाए। ये गाड़ी मिलना बेहतर था, या फिर वो बेचारा बस में जा रहा है या पैदल चल रहा है, कम से कम टांगे तो ठीक है ना। तो बाज़ औक़ात बच्चों को भी नहीं पता होता कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं। अगर माँ अपने बच्चे की हर बात सुन ले और हर बात पर उसको देने लग जाए, तो आप बताइए क्या हमारे बच्चे सही तरबियत पाए, उनकी सेहत ठीक हो? जितनी दफा बच्चा चॉकलेट मांगे माँ दे दे, जितनी दफा कैंडी मांगे माँ दे दे, तो क्या उस बच्चे को फायदा होगा? नहीं होगा ना। तो अल्लाह सुभान ताला जब हमें कोई नेमत देता है ना, वो भी खैर है, और जब अल्लाह सुभान ताला कोई नेमत लेता है ना, उसमें बहुत ही बड़ी खैर होती है। तो लिहाजा शुक्र देखना है। अब शुक्र की बात हम करें, अगली आयत में देखिए इन्नहु अला ज़ालिकल शहीद, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अल्लाह ताला कहते हैं इंसान को पता भी है कि मैं ना शुक्र हूं, यानी इंसान इस बात को खूब अच्छी तरह जानता है कि जो मालिक का हक अदा करना था वो नहीं करता। चलिए हम थोड़ा सा इसको देखते हैं अपनी अमली जिंदगी में। कोई आपको पानी का एक गिलास पेश करे, आप प्यासे थे, रास्ते में थे, कहीं थे, गाड़ी में थे, बस में थे, किसी ने आपको एक गिलास पानी का दिया, सच बताइए क्या दिल चाहता है उसके लिए? थैंक यू, सो नाइस, इट्स प्लेयर, फला फला। कोई हमें कोई गिफ्ट दे दे, जब तक उसको थैंक यू कार्ड ना दे दें, हम कहेंगे जी मजा ही नहीं आया। छोटी से छोटी चीज पे हम लोगों को कितने अप्रिशिएट करते हैं। छोटे से बच्चों को माएं क्या सिखाती हैं? थैंक यू बोलो, शुक्रिया बोलो, कहते हैं ना, क्योंकि हमें ये तहजीब सिखाई गई है, जो बंदों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं करेगा। मल्लम यशकुर इन्नास लम यशकुर इल्ला। तो लिहाजा अल्लाह का शुक्र अदा करना क्या है? कि जो नेमतें अल्लाह ने हमें दी हैं, हम उनको पाकर अल्लाह को कहें कि अल्लाह आई वॉज नॉट डिजर्विंग दैट, मैं इसको डिजर्व नहीं करती थी, ये तूने को मेरी औकात से ज्यादा ही दे दिया। अच्छा ये कौन कहेगा, ये बात कौन कहेगा बताइए, जो खुद को छोटा समझेगा और कोई